कुटज, पृष्ठ संख्या 101, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकर दोनों की भुजाओं से थहता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या। कालिदास ने ऐसा ही कहा था, इसी के पाद देश में यह जो श्रृंखला दूर तक लेटी हुई है, जो इसे शिवालक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है? लगता तो ऐसा ही है। सपाद लक्ष्य या सवा लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो वह नहीं लगता। शिव की लटियाई जाट ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूर पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी महाधिस्थ महादेव के अलक जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरि श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र झाड़ झंखाड़ और बेहया से पेड़ खड़े दिख अवश्य जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं। धूप तक सूख गई है। काली काली चट्टानों और बीच बीच में शुष्कता की अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाले रक्ताभ रेती। रस कहाँ है? ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह कर भी जी रहे हैं, उन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया हैं क्या या मस्त मौला हैं? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहरे बैठ रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस अतल गहवर से अपना भोग खींच लेते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कराते हुए ये वृक्ष दंतातीत हैं, अलमस्त हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है। पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं, फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते। पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है बहुत बार देख चुका हूँ, पहचानता हूँ। उजाड़ के साथ ही तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्रायः भूल जाता हूँ। रूप देखकर प्रायः पहचान जाता हूँ, नाम नहीं याद आता। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए, तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचरा निचोड़ प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम? पृष्ठ संख्या 102, नाम बड़ा है या रूप? पद पहले है या पदार्थ सामने है? पद नहीं सूझ रहा, मन व्याकुल हो गया। स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोने में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात, नाम में क्या रखा है। व्हाट्स देयर इन नेम, नाम की जरूरत ही तो 100 दिए जा सकते हैं। सुस्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ्र क्रीटिनी, मध्योदता, विजितापता, अलका वसंता, बहुत से नाम हैं, या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकुतोभय, गिरिगौरव, कुलोल्लाल, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, पर मन नहीं मानता। नाम इसीलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समिष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। इस गिरिकूट बिहारी का क्या नाम है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथा नाम गर्तीर्ण विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज, कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर इसका नाम चाहे कुटज ही हो विरित तो निसंदेह कुटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल यह कुटज कुटज है, मनोहर कुसुम स्तवकों से झबराया उल्लास लोल चारुस्मित कुटज जी भर आया। कालिदास ने अषाढ़स्य प्रभा दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कंभक्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फलत कुटज के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ नहीं, जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वा करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है, कालिदास ही कभी शापे नास्तंग मित महिमा, शाप से जिनकी महिमा अस्त हो गई हो, जाकर रामगिरी पहुंचे थे। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक की इस अनत्युच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटज ने उसके संतृप्त चित्त को सराह दिया था, बड़भागी फूल है यह, धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर से सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफ़ेद बाल के बच्चे उसे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्ध उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या, कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, मिली कम है, पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ, दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, लेकिन दुनिया है कि मतलब के से मतलब है। पृष्ठ संख्या 103, रस चूस लेती है छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था, एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया, हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल घट तो नहीं जाता। उनकी फक्कड़ता मस्ती कहीं नहीं गई, अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मनस्थिति में उन्होंने बेचारे कुटुज को भी एक चपत लगा दी।